जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Guru Dev, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva.
Jaya Vishwanath Paramahansa Parivraj Kacharya Stutarsat Sri Shimadeshi Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Maharaj Ki. Jaya Vishwanath Paramahansa Parivraj Kacharya Stutarsat Sri Shimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Maharaj Ki. Namacharya Haridas Thakur Ki. Jaya Sri Krishna Chaitanya Bhavanityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavinda Ki. Mathura Vrindavan Dham Ki. Ganga Mayi Jamuna Mayi Ki. Shyamakunda Radha Kunda Ki. Giriraj Govardhan Ji Ki. Hitai Gaur Premanande Hari Hari Bo.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. Narancheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Nashta Praesha Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 कंटो 4 अध्याय 25 चैप्टर नंबर 25 और श्लोक संख्या 4 टेक्स्ट नंबर 4। श्रेयः त्वं कतमत राजन् कर्मणा आत्मनः इहसे दुख हानिः सुख अवाप्ति श्रेयः तथा न इह च इष्यते। श्रेयस्त्वं कतमत राजन् श्रेयस्त्व कतमतं राजन् कर्मणा आत्मनैहसे कर्मणा आत्मनैहसे दुःखहानि सुखावाप्ति दुःखहानि सुखावाप्ति श्रेण इह चैष्यते श्रेय इह न चैष्यते। श्रेयस्त्वं कतमतं राजन् श्रेयस्त्वं कतमत राजन् कर्मणा आत्मनैहसे कर्मणा आत्मनैहसे दुःखहानि सुखवाप्ति दुःखहानि सुखावाप्ति श्रेण इह चैष्यते श्रेय इह न चैष्यते। पढ़िए। माता जी श्रेयः जोर से बोलिए श्रेयः परम आशीर्वाद त्वम तुम कतमता, वह क्या है राजन, हे राजा, कर्मणा सकाम कर्म द्वारा, आत्मनः आत्मा का यह से चाहते हो दुख हानि, समस्त कष्टों की हानि, सुख अवाप्ति, समस्त सुखों की प्राप्ति, श्रेय आशीर्वाद, ततः वह न कभी नहीं यह इस प्रसंग में च तथा इष्यते प्राप्य है। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। नारद मुनि ने राजा प्राचीन वरिष्ठ से पूछा, हे राजन, तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना तथा सुख भोगना है, किंतु इन दोनों को सकाम कर्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस संसार में मोह ने वास्तविक बुद्धि को आच्छादित कर रखा है। रजोगुणी व्यक्ति किंचित लाभ के लिए कठोर श्रम करने के लिए उद्यत रहता है, किंतु उसे इसका आभास भी नहीं रहता कि काल उसे स्थिरचित्त होकर कुछ भी भोगने नहीं देगा। श्रम की तुलना में मनुष्य को जो लाभ मिलता है वह उपयोगी नहीं होता, और यदि उपयोगी हुआ तो निरापद नहीं होता। यदि मनुष्य पहले से धनी नहीं है तो वह घर, मोटर तथा अन्य वस्तुएं खरीदना चाहता है, जिसके लिए उसे वर्षों अहर्निश श्रम करना पड़ता है। इस प्रकार बिना कष्ट उठाए सुख की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में संसार के भीतर शुद्ध सुख तो मिल ही नहीं सकता। यदि हम कोई सुखोपयोग करना चाहते हैं तो बदले में कोई दूसरा कष्ट उठाना होगा। कुल मिलाकर दुख इस संसार की प्रवृत्ति बन चुका है, और हमें जो भी सुख भोगना चाहते हैं वह मात्र छलावा मोह है। अंततः इन सबों को जन्म जरा रोग मृत्यु से कष्ट सहने पड़ते हैं। भले ही हम बढ़िया से बढ़िया दवाएं खोज निकालें, किंतु रोग या मृत्यु द्वारा उत्पन्न कष्टों को रोक पाना असंभव है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है, किंतु मोहग्रस्त व्यक्ति तथाकथित सुख के लिए कठिन श्रम करता है। निसंदेह कठिन श्रम करने को ही सुख मान लिया जाता है, यही मोह है। इसे नारद मुनि ने राजा प्राचीन वर्षत से पूछा कि वे इतने व्यवसाध्य यज्ञों को करके क्या पाना चाहते हैं? यदि कोई स्वर्गलोक भी पाले तो उसे जन्म जरा रोग और मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल सकता। चाहे तो कोई यह तर्क कर सकता है कि भक्तों की भी भक्ति के लिए कठिन तपस्या करते समय अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। निसंदेह नव दीक्षितों के लिए भक्ति साधना अत्यंत कष्टप्रद लग सकती है, किंतु उन्हें यह आशा बनी रहती है कि अंततः उनके सारे कष्ट दूर होंगे और उन्हें सुख की चरम अवस्था प्राप्त हो सकेगी। सामान्य कर्मियों को ऐसी बात नहीं रहती, क्योंकि उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति को भी हो जाए तो जन्म जरा रोग तथा मृत्यु से मुक्ति का कोई आश्वासन प्राप्त नहीं रहता। यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में स्थित ब्रह्म को भी मरना पड़ता है। भले ही ब्रह्म की मृत्यु सामान्य व्यक्ति की मृत्यु से भिन्न हो, किंतु इस संसार में वे भी जन्म जरा रोग और मृत्यु से बच नहीं पाते। अतः कोई सचमुच इन कष्टों से मुक्ति का इच्छुक है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता में की है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति से अवगत है, वह इस संसार को त्यागने पर इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेकर मेरे धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार भक्त पूर्ण कृष्ण भक्ति प्राप्त करने पर मृत्यु के पश्चात इस संसार में फिर नहीं आता, वह भगवान के धाम ही जाता है। यही सुख की चरमावस्था है, जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं रहता। श्री राधा राज बिहारी भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री गौर नेताय की जय। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदंतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन वैष्णवास्य श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजा प्राचीन वरिष्ठ वो सकाम कर्मों में लीन हैं। नारद जी को उन पर दया आई तो प्राचीन वरिष्ठ को समझा रहे नारद जी। के राजन, आप इस सकाम कर्म के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं? गीता में भी सकाम कर्म और निष्काम कर्म की बात कही। सकाम कहते हैं जो कर्म अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाए। यहां पर नारद जी प्राचीन वरिष्ठ को यह भी बताते हैं कि तुम जो ये सकाम कर्म जो यज्ञ करते हो और इसमें जो पशुओं की बलि देते हो, आगे के श्लोकों में एक दो श्लोक बाद में आएगा कि पाप है। यज्ञ में पशुओं की बलि पाप बता रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक जगह ये भी कहते हैं कि शास्त्रों में ऐसा भी कहा है कि यज्ञ में पशुओं की, जिन पशुओं की बलि दी जाती है उन पशुओं को तुरंत मनुष्यों नहीं मिल जाते। यानी पशुवध का विधान शास्त्रों में है लेकिन बड़े तरीके से। दुर्गा सप्तशती में भी पशुवध की बात की गई लेकिन कलि काल में नहीं। अश्वमेधम ग्वालंभम पवित्रम फल पैतृकम। कलि काल में कोई भी वध, कोई भी यज्ञ पशु बलि मना है। कलि काल में सिर्फ हरिनाम संकीर्तन। यहां पर नारद जी उपदेश कर रहे हैं प्राचीन वरि को। प्राचीन वरि ने पूछा, अगर राजा का श्लोक आएगा, न जनामि महाभाग परम कर्माप विद्वी ब्रूहि मे विमलम ज्ञानम ये न मुच्येय कर्म भी। के नारद जी, मेरी बुद्धि सकाम कर्मों में लिप्त हो गई है, अपनी मुक्ति का उपाय पूछते हैं। इससे नारद जी उपदेश कर रहे हैं प्राचीन वरिष्ठ को। प्राचीन वरिष्ठ जानना चाहते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में जैसे हमने पढ़ा अभी तात्पर्य में लिखते हैं कि संसार में व्यक्ति सकाम कर्मों के द्वारा जिन भोगों को प्राप्त करता है और प्राप्त करने के बाद उस जीव की स्थिति कैसी है, वो सुखी नहीं हो पाता। अनेक चित्त विभ्रांता, मोहजाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु जो। अब गीता के 16वें अध्याय का 16 नंबर श्लोक, इसमें भी आगे नारद जी श्लोक कहते हैं, 6 नंबर का श्लोक है इसमें। गृहेशु कूट धर्मेशु पुत्र दार धनार्यधि न परम बिंदते मूढ़ो भ्राम्यन संसार वत्मसु। जो व्यक्ति खाना पीना सोना गधे की तरह काम करना और अपने परिवार का पालन पोषण करना इसी को अपने जीवन का उद्देश्य मानता है, उसकी कभी गति नहीं होती। आहार निद्रा भय मैथुनानी समानी चेतानी निर्णांग पशुना ज्ञाने न राणा मधिका विशेषो ज्ञाने न हीना पशु भी समाना। खूब मेहनत किया, घर को अच्छा घर भी है, सब कुछ है जो जरूरत है, लेकिन अगर वो व्यक्ति कहे कि ये सब होने पर शरीर छोड़ने के बाद मेरी सदगति होगी, यहां पर संशय का, यहां पर संशय है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सुख का भ्रम है। रूपा जी तात्पर्य बताते हैं कैसा भ्रम। एक कुत्ता देखा होगा आपने सोसाइटी में, तो कई लोग मटन खाते हैं, मुर्गे की टांग वगैरह खाएंगे तो खा पी के हड्डी खिड़की से बाहर फेंक देंगे, तो कुत्ते घूमते रहते हैं, हड्डी चूसता रहता है, खड़ा खड़ा। पहले तो हड्डी में कुछ है नहीं, उस हड्डी में कुछ होता तो घर वाला हड्डी बाहर फेंकता, जो दूसरे की हड्डी साफ कर रहे हैं वह हड्डी बाहर फेंकेंगे। उस हड्डी में कुछ नहीं है, वो हड्डी उस कुत्ते के मसूड़ों में गलफड़ों में चुभ जाता है, नुकीला है ना हड्डी, तो उसके मसूड़ों से खून निकलता है, हड्डी में मिक्स होता है, हड्डी को चाटते रहते हैं। तो इस संसार में हमारा सुख कैसा है, अपने ही खून का स्वाद खुद ले रहे हैं। मान जब मेरा लड़का हो गया, लड़का क्या है, मेरा खून, मेरा दो लड़का दो लड़की नाती पोता क्या है, अपना खून है ना, ये अपने खून को चाटते रहते हैं, चाटते रहो। रेगिस्तान में ऊंट करील की झाड़ियां खाता है, घास फूस तो मिलती नहीं, हरी घास, तो कांटे गलफड़ों में चुभ जाते हैं, दिन भर मुंह हिलाता रहता है, चबाता रहता है। स्वाद किसका है, अपने खून का स्वाद कांटों में मिक्स करके खा रहा है। सुख की अभिलाषा क्या, आप हाईवे पर गाड़ी चलाइए कभी दोपहर की धूप में, तो आगे डामर पर आपको दिखेगा एकदम गीला गीला, मतलब ऐसा लगता है कि उधर बारिश हुई है बहुत, लेकिन वहां पर आप जाएंगे वहां भी सूखा है। सुख की आशा है लेकिन सुख कभी मिलेगा नहीं, कामना है। आशा बनाए रखते कोई तन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी लेकिन सब सुखी कृष्ण के दास। कोई तन दुखी, बैक पेन, पेट दर्द, छाती दर्द, सर दर्द, कोई व्यक्ति ऐसा बताओ मैं एकदम फिट हूं, बताओ। अगर वो जोर से भी बोल देगा मैं फिट हूं, उतने में हार्ट अटैक हो जाएगा। कोई फिट नहीं। मन दुखी, चित्त चंचल है, अनेक चित्त विभ्रांता, मन दुखी। कोई धन बिनु रहे तो उदास, दिन भर पैसा पैसा, शाम दाम दंड भेद, पुण्य पाप, धर्म कर्म, किस लिए? पैसे के लिए। पैसा मिल जाए, यहां तक कि भगवान का भजन भी पैसे के लिए, पैसा पैसा। लेकिन सब इस संसार में दुखी हैं। सुखी कौन है? जो भगवान कृष्ण का भजन करता है वो सुखी है। लोग कहें धनवान सुखी, अभी हारमोनियम नहीं है, मैं सुना देता आपको। लोग कहें धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी या शिव जी को भारी। लेकिन तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। आशा है, हम समझते हैं करोड़पति अरबपति लोग बड़े सुखी होंगे। कहां सुखी हैं? सबसे ज्यादा बीमारी इनको, खा पी के इतने मोटे हो गए गाड़ी के अंदर घुस ही नहीं सकते। कई लोगों को हमने देखा इतना मोटे, खा पी के काम धाम कुछ है नहीं, सुबह से शाम तक खाते रहेंगे जानवर की तरह, इतना मोटा बस भारी। फोटो खिंचाना ठीक है, फोटो में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब चलने को बोलो चार आदमी चाहिए उनको उठाने के लिए। गाड़ी का कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं जिसके अंदर वो घुस सके, फिर निकालने में चार आदमी, घुसाने में चार आदमी। क्या करोड़पति, अरे क्या करना है पैसे का, तुम अंदर बाहर भी घुस नहीं सकते, पैसे क्या कर। सूखी रोटी दाल का पानी खाएगा, नौकर खा रहे हैं सब। खरबों का बंगला, बुढ़ा बुढ़ी रहते हैं कुल, लड़का लड़की सब अमेरिका ब्रिटेन लंदन में, सब एनआरआई, और दो आदमी को संभालने के लिए 10 नौकर, और नौकर कौन है? वो तो मेहनत करते हैं दिन भर, वो अच्छा खाते पीते हैं। जितना ये बुढ़ा बुढ़ी एक साल में नहीं खाते, वो सब नौकर एक दिन में खा जाते हैं। क्या ये सुख है? कोई सुख है? राजा सुखी है? नहीं। ब्रह्मा जी भी सुखी नहीं। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ती अर्जुन, ब्रह्मा जी भी तकदीर लिखना, किसका क्या लिखना, विधाता है ना, गड़बड़ी भी कर देते हैं कभी कभी। सब दुखी हैं इस संसार में, जब तक हैं दुखी हैं, और जब एक दिन शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा फिर नरक का भुगतान करना पड़ेगा। सबकी मृत्यु निश्चित है, जातसी ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु च, मरना पड़ेगा। तिथि मालूम नहीं किसी को। व्यास जी का शिष्य था एक दास, एक दिन व्यास जी ने पूछा दास को, आप हमारी बहुत सेवा करते हैं, इसके पीछे क्या अभिप्राय है आपका? कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि हमारी मौत कब होगी। अभ्यास देव जी ने कहा हमको भी मालूम नहीं, चलो मृत्यु को जाके पूछते हैं। मृत्यु के पास गए, कहा कि आप कब आओगे इनको लेने। कहा कि हमको भी मालूम नहीं, जिस दिन यमराज जी पर्ची थमा देंगे उस दिन आएंगे। कभी कभी यमराज जी भी गलत पर्ची थमा देते हैं, एक ही सोसाइटी के फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के आदमी, सोसाइटी एक ही है लेकिन फ्लोर नहीं निकले, से कभी कभी फर्स्ट फ्लोर वाले की जगह सेकंड फ्लोर वाला चला जाता है। छाती पीट हमारा सब चला गया, इतनी देर में उतनी देर में जिंदा हो गया और नीचे वाला चला गया। ऐसी कई घटनाएं, नाम नाम की वजह से, जैसे एक नाम के दो व्यक्ति हैं तो कभी कभी गलत उधर भी गलती हो जाती। यमराज से पूछा, यमराज ने रजिस्टर देखा, चित्रगुप्त से कहा रजिस्टर में नाम नहीं, इसका मतलब हमारे यहां अगर हमारे यहां के रिकॉर्ड में नहीं है तो ब्रह्मा जी के यहां होगा। तो सब लोग ब्रह्मा जी के यहां गए, वेदव्यास, दास, मृत्यु, यमराज, चित्रगुप्त, पांच आदमी गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से कहा जरा रजिस्टर खोल के देखिए कि हमारे इस दास की मृत्यु कब आएगी। तब ब्रह्मा जी ने पढ़ना शुरू किया, आपके दास की मृत्यु ब्रह्मलोक में हमारे सामने, मृत्यु के सामने, यमराज के सामने, चित्रगुप्त के सामने, आपके सामने अभी होगी। तुरंत मर गया। इसका मतलब ब्रह्मलोक में भी दुख है और मरना पड़ता है। इसलिए ये संसार में कोई सुखी नहीं है। जो भजन करते हैं वो सुखी। महाराज जनक को एक बार एक सपना हुआ, सपने में देखा कि बहुत भूखे हैं, प्यासे हैं, रात भर कहीं उनको पानी नहीं मिला खाने को, कुछ न खाने को मिला न पीने को पानी मिला। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक बुढ़िया की कुटिया मिली, सपने की घटना है। और बुढ़िया से कहा हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो। उस वृद्ध महिला ने कहा मेरी कुटिया में कुछ चावल पड़े हैं, बर्तन हैं, मैं तो पका नहीं सकती, खुद अपने लिए नहीं बनाती, तो आपको अगर भूख लगी है बना लो। तो महाराज जनक ने कुटिया के अंदर से चावल निकाले और उन चावलों को उबाला, खिचड़ी जैसी उनने बनाई, और जब पक गई खाने के लिए थाली में रखा, इतने में जंगली सांड आया और उसने उस थाली के ऊपर पांव रख दिया। एक तो इतने भूखे, इतनी मेहनत की, जैसे खाने का प्रयास करने लगे सांड ने पांव रख दिया, सब खाना खराब कर दिया। बहुत जोर से चिल्लाए भूख भूख, इतने में नींद खुल गई। द्वारपाल खड़ा था नौकर, राजा को पूछा ये राजन क्या हुआ, आप भूख भूख क्यों कह रहे हैं। महाराज जनक ने अपने द्वारपाल से कहा आप राज पंडित को बुलाइए जो हमारे यहां के विद्वान हैं। महाराज जनक ने राज पंडित से पूछा कल रात की बात है, देखो 24 घंटे का रात दिन होता है, 12 घंटे की रात 12 घंटे का दिन। मैं कल रात 12 घंटे भिखारी था, भूखा था, प्यासा था, और अभी मुझे नींद खुली तो मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि दिन की स्थिति सही है या रात की ठीक है। हम जो रात को 12 घंटे जिस तरह घूम रहे थे वो हमारा असली परिचय है, या दिन में हम चक्रवर्ती सम्राट हैं ये हमारा असली परिचय है। तो पंडित जो थे वो सब वेतन भोगी पंडित हैं। नहीं नहीं, आप भिखारी नहीं, आप राजा हो। चमचागिरी, चमचागिरी किसको कहते हैं मालूम है, चम्मच बजाते रहो, खिलाने का नहीं कुछ, चम चम चम, एक थाली ले लो, टन टन टन। इसे चमचों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो चमचों के चक्कर में आके जो आदमी अपना जीवन निर्वाह करता है, उसकी गति क्या बताई चाणक्य मंडल ने, कैसे किसी सर्प को, कोई मोटा सर्प है इतना मोटा, और इतनी ही मोटी रॉड में पाइप आता है ना पानी का, उस सर्प को उसके अंदर डाल दो और बिल्कुल फिट और पलटी नहीं मार सके, कैसा तड़प तड़प के मरता है। ऐसे जो व्यक्ति चमचों के चक्कर में रहता है उसकी दुर्गति होती है, चाहे वो भौतिक मार्ग हो या आध्यात्मिक मार्ग हो। कोई बड़े बड़े संत महात्मा भी चमचागिरी के चक्कर में दुर्गति हो जाती है, ऐसे ऐसे संतों की बातें सुनने को मिली है। इसलिए उस पंडित ने कहा, नहीं नहीं, आप राजा हैं ये सही है, रात की बात तो सपने की है, लेकिन महाराज जनक जानना चाहते हैं सच क्या है। सारे देश के पंडितों को बुलाया, समाधान नहीं निकला, सबको जेल में ठूस दिया। अष्टावक्र ने समाधान किया, क्या समाधान किया कि हे राजन, तुम जो रात में भिखारी थे ये बात भी सही नहीं है, दिन में जो चक्रवर्ती सम्राट हो ये बात भी सही नहीं है। सही क्या है? सही इस संसार में सिर्फ भगवान का नाम है, नाम भगवान का नाम और उनकी कथा सत्य है। यह हमारे जीवन का वृत्तांत है। फिर प्राचीन वरी को बताते हैं महाराज नारद जी कि तुमने जिन पशुओं की यज्ञ में बलि दी है, देखो मैं तुमको सीन अभी दिखाता हूं, आकाश मार्ग में सीन दिखाया नारद जी ने। क्या देखा? कि वो हजारों पशु जिनकी राजा ने सकाम कर्मों के द्वारा यज्ञ में उनकी बलि दी थी, वो सब पशु उनका इंतजार कर रहे थे कि कब राजा मरेगा और कब हम इसको दंडित करेंगे। इसमें यज्ञ में पशुओं की बलि महापाप। शबरी प्रसंग में ऐसा आता है रामायण में कि शबरी जब 9 साल की थी तो उनका ब्याह होने वाला था, तो एक दिन शबरी ने अपनी मां से पूछा, उनके बाड़े में बहुत हजारों जानवर बंधे हुए थे, शबरी ने पूछा मां कि बाड़े में इतने सारे जानवर क्यों बंधे हैं। मां ने कहा, आपकी शादी है बेटी, क्योंकि हम लोग समर जाति के हैं, हम मांस उनका काटेंगे परोसेंगे, ये हमारी रीति है। तो शबरी ने विचार किया, हमारी हम दोनों की खुशी के लिए इतने जीवों की हत्या। उसने अर्धरात्रि में जाकर के उस बाड़े का जो गेट था उसको खोल दिया। ऐसा प्रसंग है रामायण में कि उन सब पशुओं ने मुंह का आशीर्वाद दिया शबरी को कि हे बेटी, तुमने हमको आज बाड़े से मुक्त किया है, इससे हम तुमको सब आशीर्वाद देते हैं कि तुम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगी। उन पशुओं के आशीर्वाद से शबरी को इतनी ऊंची स्थिति मिली। इसलिए दया, दया भी एक तपस्या है, दया भी एक भक्ति है। गोस्वामी जी भी कई पंथ पोथियों में आपने देखा होगा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लगी घट में प्राण। गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, दया करे धर्म मन राखे, मन में रहे उदासी, पराया दुख अपना समझे, ताही मिले अविनाशी। गुरु ग्रंथ साहिब में जिस व्यक्ति के अंदर दया नहीं होती, वो व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा भी है, वो व्यक्ति की कभी सदगति नहीं हो सकती। दया क्या है? और सबसे पहले दयावान किसको कहते हैं? दया शब्द का उल्टा करिए, दया का उल्टा करो याद, जो भगवान की याद करता है वही दया कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी दया कर सकता है। जो प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, वही जगत के ऊपर दया कर सकते हैं। अगर भजन के बिना हम दया की बात करें तो ये ढोंगे लोगों का काम, दया नहीं कर सकते। इसलिए भगवान का भक्त सब जीवों पर दया करता है। इससे नारद जी यहां पर प्राचीन वरिष्ठ पर दया कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी ने पूरे जगत पर दया की, हम पर दया की, और उनकी दया का प्रमाण देखो। क्योंकि दया कैसी है, भगवान का भजन करने से दया जो आई वो दया का ये प्रमाण है। और एक संसार में भी लोग दया करते हैं, कोई नेता चुनाव जीत गया, बस 5 साल ये कर दो वो कर दो, विकास भी किया अपने घर से, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, हम बंबई को 5,000 करोड़ रुपया देते हैं, अपने घर से देते हो, तुम्हारे पास कुछ है हिंग फटगड़ी, ये दया नहीं, ये सिर्फ धोखेबाजी है, बेवकूफ बनाना लोग। वैसे मैं भगवान का भजन करता हूं, सेवा करता हूं, लेकिन दया नहीं करता तो उसका कोई मतलब नहीं। इसे वैष्णव का परम लक्ष्य क्या है भक्त का, दया। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पर आई जाने रे, जो दूसरे की दुख दर्द को पीड़ा को समझता है। वो पीड़ा क्या है कि मनुष्य जीव संसार में जन्म मृत्यु के बंधन में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, इसमें भटक रहा है, फंस गया है। जो इन प्रपंचों से हमको निकाल दे वो दयावान है। ऐसे दयावान कौन है, नारद जी ऐसे दयावान हैं, उनकी परंपरा में सब दयावान हैं, श्री प्रभुपाद जी दयावान हैं, भगवान के भक्त दयावान हैं, ये सब दया के प्रकोष्ठ में आते हैं। और दया करने के लिए भगवान को याद करना, और भगवान को याद कैसे करेंगे, इसी श्लोक को बोलेंगे। संसार में रह करके भजन करना कठिन बताया, संसार में रह के भी भजन होता है लेकिन सही भजन नहीं। एक जंगली तोता ने एक राजा के बंगले का तोता, बगीचे का एक जंगली तोता उसका दोस्त था, उसके पास गया तो राजा के सुंदर बगीचे में रहता है। तो एक दिन उसने अपने मित्र तोता से कहा जंगल में कि कभी हमारे भी बगीचे में आओ ना। जंगली तोते ने बहुत स्वागत किया, आम खिलाए, फल फूल खिलाए, कहा कि मित्र कभी हमारे यहां भी पधारिए, मैं भी बहुत सुंदर बगीचे में रहता हूं। तो एक दिन वो जंगली तोता, वन का तोता, राजा के बगीचे में गया तो उस तोते ने स्वागत किया। तो तोते ने जंगली तोते से कहा कि मित्र कुछ खाओ ना, फल फ्रूट खाओ। तो जब तोता खाने लगा तो इतने में आवाज आई टक, चौकीदार बगीचे का, चौकीदार बगीचे का सिक्योरिटी गार्ड डंडा घुमा रहा था, टक 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 टक। तो जंगली तोते से तोता बोला तुम खाते क्यों नहीं, खाओ ना। तो उसने कहा कैसे खाऊं, देखो ना टक, मैं कुछ खाता हूं टक, फिर खाता हूं टक टक। तो बगीचे का तोता बोला यहां तो दिन भर ही टक टक होती है, तुमको टक टक में खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे मर जाओगे। तो उसने कहा ये टक टक वाला भोजन हमसे नहीं होगा, हमारे तो वन का ही भोजन ठीक है, वहां कोई टक टक नहीं कुछ नहीं। ये संसार क्या है,
काजर की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, लेकिन काजर की एक रेख लागी है बैलागी है। कोई कितना ही चतुर व्यक्ति कहे नहीं नहीं मैं घरवार भी संभाल लूंगा, बिजनेस भी, भजन भी करूंगा, हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। इसलिए बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों ने अपने राज्य छोड़ दिए। मनु शत्रुपा के लिए कोई कमी है? मनु महाराज ब्रह्मा जी के लड़के, इस पृथ्वी के सम्राट हैं, उनको जंगल में तपस्या करने की क्या जरूरत है? गृह कारज नाना जंजाला। राजा ने क्या कहा? इसमें टक टक है, टक टक। आप जब करोगे घर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इतने आपकी पत्नी बोलेगी जरा दूध लेके आओ तो 1 किलो। फिर दूध लेके आए, फिर जब करने बैठे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, पत्नी ने बोली ब्रेड तो लाए नहीं आप, तो दिन भर टक टक टक। इधर कोई समस्या, भजन करते रहो। और अगले आदमी को भजन का महत्व भी मालूम है और घर के सदस्यों को कुछ मालूम है, तो टक टक लाठी मारते रहते। इसलिए भगवान के बन का मतलब भगवान के भक्तों के साथ भजन करना अच्छा है, बशर्ते कि पारिवारिक और सांसारिक लोगों के बीच में रह के भजन करना अनुकूल नहीं है। इसे भगवान के भक्तों के संग भजन करना है। साधु संग सर्वशास्त्री कौ लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कहीं ऐसा लिखा साधु नहीं, संसार संग परिवार संग साधु संग कौ सर्व सिद्धि है लिखा? कहीं भी एक श्लोक कोई शब्द बताओ। इसलिए भगवान के भक्तों के संग, जो नारद जी के अनुगत्य में जो लोग भजन कर रहे हैं, उनके संसर्ग में रह करके भक्ति करना। एक राजा के अस्तबल में एक राजा का महल है, महल के बाजू में एक अस्तबल है, अस्तबल कहते हैं जहां घोड़ों को बांधा जाता है, और घोड़े जहां बांधा जाते हैं अस्तबल के ही नजदीक में एक बहुत बड़ा किचन है, और किचन में अचार मुरब्बा सब 10 वैरायटी के अचार रखे हुए। तो उस राजा के अस्तबल में घुड़शाला में बहुत सारे बंदर रहते हैं। तो बंदर लोग क्या करते हैं, किचन में जाएंगे और ढक्कन खोलेंगे और मुरब्बा खाना, और मुरब्बा बहुत आंवले का मुरब्बा बहुत अच्छा होता है। तो जब ये रोज मुरब्बा खाने लगे तो इनकी सबकी सेहत चेंज हो गई, लाल हो गए, लाल तो ऐसे ही होते हैं बंदर, और लाल हो गए। तो इन सब बंदरों में एक बूढ़ा बंदर था, तो बूढ़ा बंदर बोला भाई तुम आजकल बहुत लाल दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? तो सब बंदरों ने कहा हम आजकल मुरब्बा खाते हैं, वो भी राजमहल का, तो एकदम बिल्कुल मिलावट नहीं है इसमें, फर्स्ट क्लास। बूढ़ा बंदर बोला ज्यादा मुरब्बा मत खाया करो, सब मुरब्बा निकल जाएगा एक दिन। तो सब बंदरों ने मिलकर कहा तुम बूढ़ा हो गया है, खुद उठक कूद नहीं कर सकता, तुमको मुरब्बा खाने को मिलता नहीं, हमको भी मना करता है, सब बेकार है बूढ़ा आदमी। बूढ़ा बंदर बोला देखो मैं समझा रहा हूं, जितना मुरब्बा तुमने खाया और जितनी चमड़ी तुम्हारी लाल हुई है ना, ये सब निकलने वाली है एक दिन। तो बंदर हमेशा बूढ़े बंदर का मजाक उड़ाते। एक दिन क्या हुआ, अस्तबल में आग लग गई और सब घोड़े जल गए, और राजा ने राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने कहा इन घोड़ों के बहुत सारे घाव जल गए हैं, तो इनको हील करने के लिए, भरने के लिए अगर बंदरों का मांस कहीं से मिल जाए तो जल्दी ठीक हो जाएंगे।
तो राजा ने कहा हमको तो बंदर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, मेरे तो किचन में रोज बंदर आते हैं। तो राज कर्मचारियों ने सब बंदरों को पकड़ा और सबके मोटे मोटे जांघ काट करके घोड़ों की जांघ पर लगा दी। तो दो चार बच गए थे, वो गए बूढ़े बंदर के पास। बूढ़ा बंदर बोला सब मुरब्बा निकला, नहीं निकला अभी सारा मुरब्बा निकल गया। इससे भगवान के भक्त कहते हैं भजन करो भजन करो भजन करो। अरे भजन कौन करता है? जिनकी शादी नहीं होती वो भजन करते हैं। समाज में एक ये भी एक दृष्टिकोण है, भगवान के भक्त कौन बनते हैं? जिनसे शादी नहीं होती, जिनकी नौकरी नहीं लगती, या पैसे की शॉर्टेज है, एकदम असहाय। कई लोग तो साधु संतों के लिए बेचारा शब्द यूज करते हैं, बेचारे बेचारे। मतलब इतने दयावान वो लोग हैं कि साधु को भी बेचारे। इनका खुद का ठिकाना नहीं है, दूसरे को बेचारे। मतलब मैं बेचारे लोग, कोई नहीं है इनका आगे पीछे। भगवान भी बात कहते हैं भागवत के दशम स्कंद में, कृष्ण रुक्मणी संवाद में प्रभु कहते हैं बाद रुक्मणी को कि जो हमारे भक्त हैं कौन है? ये सब कंगाल भिखारी जिनका कोई आगे पीछे नहीं, तुमने इन लोगों की चक्कर मार के हमसे शादी कर ली? ये भक्तों के चक्कर में क्यों आ गई तुम? रुक्मणी से कहते हैं। तो रुक्मणी जी कहती हैं ये संसार में इस भूमंडल में भगवान के भक्त से धनी कोई नहीं होता। निष्किंचना वयं शश्वत निष्किंचन वयं जना, मैं भूल रहा हूं श्लोक। रुक्मणी जी जवाब देती हैं प्रभु के कृष्ण के प्रश्नों का कि संसार में त्रिलोकी में अगर कोई धनवान व्यक्ति है तो कौन है? जो भगवान का भजन करता है वो धनी है। इससे भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति धनी है, इधर भी धनी है उधर भी धनी है। इसे ऐसा भजन हमें इस संसार में करना है कि हम इस संसार में भी धनी रहें जब तक शरीर हो, और जब शरीर छोड़ के जाना पड़े वहां भी हमारी स्थिति बनी रहे। दृष्टांत महासागर में एक दृष्टांत है, एक राज्य में एक राजा मर गया। अब उनका लड़का नहीं राजा का, तो मंत्रियों ने बैठक बुलाई कि अब राजा के बाद दूसरा राजा कौन होगा। तो मंत्रियों ने एक संशोधन, एक संविधान पास किया कि हम हमेशा के लिए एक को राजा नहीं बनाएंगे, हम एक साल के लिए सबको राजा बनाएंगे। मतलब एक साल एक को बनाएंगे, दूसरे साल दूसरे को, तीसरे साल से हर साल नया नया राजा। और उन्होंने एक संविधान बनाया कि जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी है, वो भिखारी है, गरीब है, अमीर है, लूला है, लंगड़ा है, कुछ हम कोई भी राजा बनने का इच्छुक है, एप्लीकेशन दीजिए आवेदन, और हम एक साल तक उसको राजा बनाएंगे। जब एक साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो एक बहुत घनघोर जंगल है, खतरनाक, वहां हम उसको भेज देंगे। जैसे काला पानी पहले होता था। तो कुछ लोग तो बोलते अरे एक साल तक राजा, फिर मर जाना, राजा बनने से क्या फायदा। और कई लोग ऐसे थे अरे मरना तो है ही एक दिन, चलो एक साल राजा ही बन के देख लें। तो कुछ लोग का एक साल तक मजा तो कर लें, राजा बनने का मत आनंद लो, राजसी भोग भोगो। तो एक बार क्या हुआ, बहुत सारे लोग राजा बने और सबको जंगल में भेज दिया, और जंगल में सब जंगली जानवर उनको काट देते, मर जाते हैं। तो बहुत दिनों से उनको एक राजा नहीं मिला। तो एक बार एक भक्त जा रहे थे भगवान को, तो भगवान के भक्त ने कहा मैं आपके यहां का राजा बनना चाहता हूं। लेकिन मंत्रियों से कहा हम एक साल राजा रहेंगे, जो हम कहेंगे वो होना पड़ेगा। उन्होंने कहा राजा का मतलब क्या, आप आदेश दीजिए उसका पालन होगा। तो भगवान के भक्त को राजा बना दिया एक साल के लिए। तो भक्त ने पहले दिन आदेश दिया कि जो घनघोर जंगल है वो पूरा जंगल साफ करो। दूसरे दिन आदेश दिया सब झाड़ियां सब साफ करो कांटे। तीसरे दिन आदेश दिया वहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आओ, सब बिल्डरों को बुलाओ। चौथे दिन आदेश दिया जैसे महल में हम यहां रहते हैं ऐसा ही महल वहां बनाओ। एक साल में उस भक्त राजा ने जिस राज्य में वो रहते थे शहर में, वैसा ही शहर वो घनघोर जंगल में बना दिया। अब एक साल पूरा हो गया तो भक्त राजा बोला कि मंत्री जी अब हम किधर जाएं? तब मंत्री जी बोले चाहे इधर जाएं या उधर जाएं, अब चाहे इधर रहो या उधर रहो, आपकी मर्जी। तो भक्ति का मतलब क्या कि हम भगवान का ऐसा भजन करें कि जो सुख हम वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में हमको मिलेगा सेवा का, वही सेवा का सुख हम यहां भी लें। ये मतलब है। तो समय हो गया है, किसी का कोई कमेंट्स या कुछ है? कोई नहीं है? बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।